आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासतों से कहा है कि वो स्टार्टअप इदारों के फरोग के लिए साजगार माहौल पैदा करें और लोगों को हिरासा किए जाने की रोकथाम के खातिर जाब्तों को सहल बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारादिस्सनायके के साथ बातचीत करेंगे। आईन के बारे में दो रोजा खसूसी बहस आज राज्यसभा में शुरू हो रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सरकार नक्सलियों के तशद्दुद से मुतासिरा लोगों और खुद सुपुर्दगी करने वाले माओ नवाजों की बहबूद के लिए एक जामे मंसूबा तैयार कर रही है। मुमताज तबला नवाज जाकिर हुसैन का अमरीका में सैन फ्रांसिस्को में इंतकाल हो गया है। और हॉकी में मस्कत में भारत ने चीन को 2-3 से हराकर खवातीन का जूनियर एशिया कप टाइटल कप जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासतों पर जोर दिया है कि वो छोटे शहरों में अपना कारोबार करने वाले अफराद के लिए साजगार मकामात की निशानदेही करें और उनकी मुआवनत के लिए इकदामात करें। नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरीज की चौथी कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने रियासतों से कहा कि वो मुतालिका जाब्तों को सहल बनाएं, क्योंकि ऐसा न होने से लोगों को हिरासा किए जाने के वाकयात पेश आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कॉन्फ्रेंस के शुरका पर जोर दिया कि रियासतों को हुक्मरानी के मॉडल में इसलाह करनी चाहिए ताकि शहरियों की शमूलियत या जन भागीदारी की हौसला अफजाई की जा सके। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर तवज्जो मरकूज किया जाना अहमियत का हामिल है। साथ ही लोगों को सरकार के मुख्तलिफ इकदामात के बारे में जानकारी फराहम करना भी अहम है। सर्कुलर मईशत का तस्करा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को सराहा कि गोबरधन प्रोग्राम को अब तवानाई के एक बड़े वसीले के तौर पर देखा जा रहा है। जनाब मोदी ने रियासतों को हिदायत दी कि वो ई वेस्ट की रिसाइकिलिंग के लिए तखमीना लागत और असल लागत में फर्क को दूर करने के मुख्तलिफ मुतबादिल रास्ते तलाश करें। सेहत के शोबे के ताल्लुक से वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि फिट इंडिया तहरीक के तहत मुल्क में मोटापे को एक बड़े चैलेंज के तौर पर लिया जाना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि एक सेहतमंद और तंदुरुस्त भारत ही विकसित भारत बन सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और दौरे पर आए हुए श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारादिस्सनायके आज नई दिल्ली में दोतरफा बातचीत करेंगे। वो बाहमी मफाद के मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। जनाब दिस्सनायके भारत के 3 दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे थे। उनका इस्तकबाल इत्तिलात और नशरियात के वजीर ममलकत डॉक्टर एल मुरुगन ने किया था। श्रीलंका के सदर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनपड़ से मुलाकात करेंगे। वो बिहार में बौद्ध गया भी जाएंगे।
जनाब दिस्सनायके ने जब से सदर का ओहदा संभाला है, ये भारत का उनका पहला दोतरफा दौरा है। उम्मीद है कि इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती और बाहमी फायदेमंद तआवुन को मजीद इस्तेहकाम हासिल होगा। जनाब दिस्सनायके भारत और श्रीलंका के दरमियान सरमायाकारी और तिजारती राबतों को फरोग देने के मकसद से दिल्ली में एक तिजारती तकरीब में शिरकत करेंगे। भारत और श्रीलंका के दरमियान कारोबार 2023-24 में $5.5 अरब तक पहुंच गया है। श्रीलंका बहरे हिंद खित्ते में भारत का करीब तरीन पड़ोसी मुल्क है और वो वज़ीर-ए-आज़म के सागर विजन और भारत की पड़ोस मुकदम पॉलिसी में मरकजी हैसियत का हामिल है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
आईन के बारे में 2 खसूसी मुबाहसा आज राज्यसभा में शुरू हो रहा है। मुल्क में आईन इख्तियार किए जाने के 75वें साल के आगाज के मौके पर यह बहस होगी। इसी तरह का मुबाहसा जुमे और हफ्ते के रोज लोकसभा में हुआ था। उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल राज्यसभा में मुबाहसे का जवाब देंगे। बीजेपी ने राज्यसभा के अपने सभी अरकान के लिए 3 पर मुश्तमिल एक व्हिप जारी की है, जिसमें उन पर जोर दिया गया है कि वो भारतीय आईन पर बहस के दौरान आज और कल ऐवान बाला में मौजूद रहें। 26 नवंबर 1949 को भारतीय आईन साज असेंबली ने बाजाब्ता तौर पर आईन को अपनाया था और ये 26 जनवरी 1950 को नाफिज हुआ था। इस तरह भारत एक खुद मुख्तार और जमहूरी मुल्क के तौर पर कायम हुआ। 2015 में मोदी सरकार ने बाजाब्ता तौर पर यह ऐलान किया था कि 1949 में भारतीय आईन अपनाए जाने के एहतराम के तौर पर हर साल 26 नवंबर को यौम आईन या संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کل شام چھتیس گڑھ کے اپنے دورے میں بستر ضلع کے ڈویژنل صدر مقام جگدل پور میں خود سپردگی کرنے والے ماؤ نوازوں اور ان کے اہل خاندان کے ساتھ گفتگو کی۔ جناب امیت شاہ نے کہا کہ سرکار نکسلیوں کو تشدد سے متاثرہ لوگوں کے ساتھ ساتھ خود سپردگی کرنے والے ماؤ نوازوں کی بہبود کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کر رہی ہے۔
بھارت سرکار سرنڈر یوواؤں کا اور سرنڈر لوگوں کے جیون کے کلیان کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نکسلواد یا ہنسا سے پیڑت لوگ ان کے کلیان کی سمگرتا سے یوجنا بھی بنا رہی۔ 15,000 مکان بھارت سرکار اپنے خرچے سے نکسل پربھاوت کھیتر میں بنا رہا ہے۔ این ڈی ڈی بی کو میں نے ذمہ داری دی ہے کہ سارے نکسل پربھاوت کھیتر جو نکسل سے مکت بھی ہو گئے ہیں وہاں پر ہر پریوار کو ایک گائے یا بھینس دے کر ڈیری کوپریٹ بنانے کی ہم شروعات کریں گے۔
مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
جناب امیت شاہ چھتیس گڑھ کے اپنے دورے کے دوسرے دن آج جگدل پور میں امر واٹیکا کے مقام پر ان سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کریں گے جو نکسلیوں کے حملوں میں شہید ہوئے ہیں۔ وہ شہید جوانوں کے ارکان خاندان سے بھی ملیں گے۔ اس کے علاوہ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج شام چھتیس گڑھ کی راجدھانی رائے پور میں اعلی سطح کی میٹنگ کی صدارت بھی کریں گے۔ اس میں نکسلیوں کے خلاف کاروائی اور ماؤ نوازوں سے متاثر علاقوں میں ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ رائے پور سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
شہر آفاق طبلہ نواز ذاکر حسین کا کل رات امریکہ میں انتقال ہو گیا۔ وہ 73 سال کے تھے۔ ان کے کنبے کے ذرائع نے بتایا کہ انہیں بلڈ پریشر کی بیماری کا سامنا تھا۔ اس سے پہلے ذاکر حسین کو دل کی بیماری کی وجہ سے سان فرانسسکو کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ استاد ذاکر حسین 9 مارچ 1951 کو ممبئی میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ طبلہ نوازی کی ایک مثالی شخصیت، استاد اللہ رکھا کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور انہیں بہت چھوٹی عمر سے ہی موسیقی سے گہرا لگاؤ تھا۔ اپنی 60 سال کی پیشہ ورانہ زندگی میں انہوں نے 5 گریمی ایوارڈز حاصل کیے، جس میں اس سال کے آغاز میں گریمی ایوارڈز کی 66ویں تقریب میں ان کے دیے گئے 3 گریمی ایوارڈ شامل ہیں۔ انہوں نے کچھ فلموں میں اداکاری بھی کی، جن میں ساز ہیٹ اینڈ ڈسٹ بھی شامل ہیں۔ ان کی تازہ ترین فلم منکی مین 2024 میں ہی ریلیز ہوئی تھی۔ ذاکر حسین نے بھارت اور بین الاقوامی سطح کے بہت سے مشہور و معروف فنکاروں کے ساتھ اپنی طبلہ نوازی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے جیز کے ساتھ مل کر ہندوستانی کلاسیکل موسیقی بھی پیش کی، جو اپنے اندر ایک منفرد انداز کی موسیقی ہے اور لوگوں نے جسے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ ذاکر حسین کو 1988 میں پدم شری، 2002 میں پدم بھوشن اور 2023 میں پدم وبھوشن سے نوازا گیا۔ مہاراشٹر اسمبلی کا موسم سرما کا اجلاس آج ناگپور میں شروع ہوگا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
مہاراشٹر اسمبلی کا موسم سرما کا اجلاس وزیروں کی کونسل میں نئے شامل کیے گئے وزیروں کے تعارف کے ساتھ شروع ہوگا۔ آج اس سال کے لیے ضمنی مطالبات زر بھی پیش کیے جائیں گے۔ برسر اقتدار مہایوتی سرکار کی کابینہ میں کل توسیع کی گئی ہے، جس کے تحت 39 وزیروں کو عہدے کا حلف دلایا گیا۔ کابینہ وزیروں میں سب سے زیادہ بی جے پی کے وزیر ہیں، ان کی تعداد 16 ہے، جس کے بعد شیو سینا کے 9 اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے 8 کابینی وزیر شامل ہیں۔ کل ناگپور میں اسمبلی کے موسم سرما کے اجلاس سے قبل شام ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس نے بتایا کہ اس اجلاس کے دوران 20 بل پیش کیے جائیں گے۔ اپوزیشن کی قیادت والی مہا وکاس اگھاڑی نے روایتی چائے پارٹی کا بائیکاٹ کیا تھا، جس کا اہتمام کل سرکار کی طرف سے کیا گیا تھا۔ یہ بائیکاٹ پربھنی اور بیڑ میں پرتشدد واقعات اور کانٹریکچوئل ملازمت نیز اسمبلی اجلاس کی مختصر مدت جیسے معاملات پر کیا گیا تھا۔ ناگپور سے دھنجے وانکھیڑے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسا نائکے نے کہا ہے کہ انہوں نے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کے ساتھ نتیجہ خیز مذاکرات کیے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر دسا نائکے نے کہا کہ ان کی بات چیت میں بھارت سری لنکا اقتصادی تعاون کو مستحکم بنانے، سرمایہ کاری کے موقعوں میں اضافہ کرنے، علاقائی سلامتی کو مضبوط بنانے اور سیاحت و توانائی جیسے بنیادی شعبوں کو ترقی دینے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وزیراعظم نریندر مودی 29 دسمبر کو آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک عوام سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 117वां नशरिया होगा। इस प्रोग्राम के लिए लोग अपने ख्यालात और तजावीज इस टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर और नरेंद्र मोदी ऐप या माई गव ओपन फोरम के जरिए भी भेज सकते हैं। ये ख्यालात और तजावीज इस महीने की 27 तारीख तक कबूल की जाएंगी। ये प्रोग्राम आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क, दूरदर्शन, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर सुना जा सकेगा। ये प्रोग्राम AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात और नशियात की वजारत के YouTube चैनल्स पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी से हिंदी नशरिए के फौरन बाद इलाकाई जबानों में भी नशर किया जाएगा। गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों ने इस माह के शुरू के 2 हफ्तों में भारतीय असासा मार्केट में तकरीबन 28,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की। आदाद व शुमार के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों FPIs ने भारत की शेयर मार्केट में 22,766 करोड़ रुपए और कर्जा मार्केट में 4,814 करोड़ रुपए लगाए हैं। ये सरमायाकारी पिछले कुछ महीनों में बड़े पैमाने पर रकम निकाले जाने के बाद की गई है। गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों ने नवंबर में 21,612 करोड़ रुपए और अक्टूबर में 94,017 करोड़ रुपए मार्केट से निकाले थे। FPIs ने इस साल अभी तक भारत की असासा मार्केट्स में 1.2 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है। 1971 की जंग में पाकिस्तान पर भारत की फतह की याद में आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर उन शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है जिन्होंने जंग के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया था। 1971 में आज ही के दिन पाकिस्तानी फोर्सेस के सरबराह जनरल AA खान न्याजी ने अपने 93,000 फौजियों के साथ इत्तेहादी अफवाज के सामने गैर मशरूत तौर पर खुद सुपुर्दगी कर दी थी। ये इत्तेहादी फोर्सेस भारतीय फौज और मुक्ति वाहिनी पर मुश्तमिल थी। जंग के खात्मे पर मशरकी पाकिस्तान के अलहदा होने के बाद बांग्लादेश वजूद में आया था। तानसेन मौसीकी फेस्टिवल की 100वीं तकरीब को यादगार बनाने के लिए गिनीज बुक का एक आलमी रिकॉर्ड बनाया गया है। ये रिकॉर्ड कल मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 9 साजों को एक साथ 9 मिनट तक बजाया गया, जिसमें तबला, बांसुरी, वायलन, संतूर, सरोद, सारंगी, सितार, बेंजो और हारमोनियम शामिल हैं। मालदोवा ने बैन अल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद ISA के फ्रेमवर्क से मुतालिक एक माहदे पर दस्तखत किए हैं और इस तरह वो इस इत्तेहाद में बाकायदा तौर पर शामिल हो गया है। हॉकी में ओमान के शहर मस्कत में भारत ने खवातीन की जूनियर एशिया कप चैंपियनशिप जीत ली है। कल रात खेले गए फाइनल में भारतीय टीम ने पेनल्टी शूटआउट में चीन को 2-3 गोल से हरा दिया। इस तरह भारतीय खवातीन ने यह टाइटल अपने पास बरकरार रखा है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब, प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने महाराष्ट्र की महायुति हुकूमत में काबीना की तौसी किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे छत्तीसगढ़ को अहमियत के साथ शाये किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें छत्तीसगढ़ और मुल्क को नक्सल फ्री बनाने के लिए पूरी तरह पाबंदे अहद हैं। इसके अलावा आज की उर्दू अखबारात ने उत्तर प्रदेश असेंबली का सरमाई इजलास शुरू होने, वजीर दिफा राजनाथ सिंह के जरिए महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती पर यादगारी टिकट जारी किए जाने, हैदराबाद के गच्ची बावली में साइक्लोथोन का इनेकाद किए जाने की खबर को नुमाया किया है।
और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासतों से कहा है कि वो स्टार्टअप इदारों के फरोग के लिए साजगार माहौल पैदा करें और लोगों को हिरासा किए जाने की रोकथाम के खातिर जाब्तों को सहल बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीलंका के सदर अनुराग कुमारादिसनायके के साथ बातचीत करेंगे। आईन के बारे में 2 रोज़ा खसूसी बहस आज राज्यसभा में शुरू हो रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सरकार नक्सलियों के तशद्दुद से मुतासरा लोगों और खुद सुपुर्दगी करने वाले माओ नवाजों की बहबूद के लिए एक जामे मंसूबा तैयार कर रही है। मुमताज तबला नवाज जाकिर हुसैन का अमरीका में सान फ्रांसिस्को में इंतकाल हो गया है। और हॉकी में मस्कत में भारत ने चीन को 2-3 गोल से हराकर खवातीन का जूनियर एशिया कप टाइटल जीत लिया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।